أبقليات بتلينج آيت نمبر 29 وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. صاف کہہ دو کہ یہ حق ہے تمہارے رب کی طرف سے, اب جس کا جی چاہے مان لے اور جس کا جی چاہے انکار کر دے. اوپن چوائس, کھلی چھٹی. اللہ کسی کو نہیں بچاتا. یاد رکھیے جو افراد اور تفریق میں پڑ جاتے ہیں, جو اپنی مرضی کے کام دین کے نام پہ کرنے لگ جاتے ہیں, ایسے لوگوں کو پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتے ہیں کہ تم جدھر مرضی پڑھو مجھے تمہاری پرواہ نہیں. ہاں انا اعتدنا للظالمین نارا احاط بهم سرادقها, ہم نے انکار کرنے والے ظالموں کے لیے ایک آگ تیار کر رکھی ہے جس کی لپٹیں انہیں گھیرے میں لے چکی ہیں. وہاں اگر وہ پانی مانگیں گے تو ایسے پانی سے ان کی توازو کی جائے گی جو تیل کی تل چھٹ جیسا ہوگا, جلا ہوا تیل جس کے آخر میں گوشت کی چربی بھی ہے اور چکنائی اور پکوڑوں کا آخر میں بچا ہوا برادا بھی ہے. تیل, پانی, آئل, سب کچھ ملا ہوا تل چھٹ جیسا ہوگا, ان کا منہ بھون ڈالے گا. حدیث میں آتا ہے جہنمی جہنم سے کتنا دور ہوگا کہ اس جہنم کے آنے والے سیک اور اس کی گرمی سے اس کے منہ کی جو کھال ہے وہ گر کے اس کے پاؤں میں پڑ جائے گی. پڑھیں گے آگے آپ قرآن میں لفظ آتے ہیں, شوا کا لفظ ہے دمنت برا و تولا, یعنی ایسے لوگ چہروں کی کھال جھلسے گی, جلس کے انسان کے پاؤں میں آنے لگے گی. بدترین پینے کی چیز ہے اور بہت بری آرام گاہ ہے. اللہ ہمیں ایسے برے انجام سے بچا کے رکھے. ہاں رہے وہ لوگ جو ایمان لے آئیں, جو مان لے, جو ریزسٹنس چھوڑ دے, جو بندے بن جائیں, جو عاجزی اختیار کریں اور نیک عمل کریں, اور نیک عمل کریں تو یقیناً ہم نیک لوگوں کا اجر ضائع نہیں کرتے. دیکھیے نیکی کا معیار لوگ نہیں ہے, نیکی کا معیار کیا ہے؟ اللہ اور اس کے رسول کی بات ہے. آپ دیکھیے کہ کسی بھی کمپنی کو آپ سمجھیے کہ جب کوئی ان کو کوئی آرڈر دیتا ہے تو ساتھ ایک سیمپل بھیجتا ہے, کوئی اسکیلٹن بھیجتا ہے یا کوئی ایک سانچا ہوتا ہے, کہتے ہیں اس سانچے کے مطابق ٹائلیں بنا کے بھیج دو, یہ سائز, یہ تھکنس, یہ سب کچھ. اب جب وہ چیزیں بن کے جاتی ہیں تو وہ اپنے سانچے کے ساتھ ناپتے ہیں. آپ ساری باتیں چھوڑ دیں, اپنے درزی کو کپڑے دینے کی بات کر لیں, آپ ناپ دیتے ہیں کہ اس ناپ کے مطابق جوڑا سی دو, تو جب جوڑا آئے تو پتا چلے کھلے کی جگہ تنگ اور تنگ کی جگہ کھلا, اور جو آپ نے کہا اسے اپوزٹ ہے. آپ کہتے ہیں اس کے منہ پہ مار دو, قیامت کے دن وہ اعمال منہ پہ مار دیے جائیں گے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے سانچے میں فٹ نہیں ہوں گے اور اخلاص کے سوا کسی اور کی خوشی کے لیے ہوں گے. نہ اس میں اخلاص ہوگا نہ صدق ہوگا, فرق دونوں کا بتا چکی ہوں. نہ طالب اللہ تھا نہ مطلوب ایک تھا, کیا تو اللہ کے لیے, بعض کام کرتے اللہ کے لیے, یعنی نماز پڑھتے اللہ کے لیے, لیکن تعریف اپنی مطلوب ہے. یہ فرق ہے صدق اور اخلاص کا. اللہ کیا چاہتا ہے, پڑھو بھی میرے لیے اور اس کا اجر بھی مجھ سے مانگو. تو جب انسان اس طرح کے کام کریں گے تو آج آپ دیکھیں کہ اس کے لیے کتنی آسانی ہے, فرمایا پھر اجر ضائع نہیں ہوگا. لوگوں کی جہالت دیکھیے کہ ان کو رول ماڈل بنانے کی بجائے لوگوں نے ان کا مقبرہ بنانا چاہا, کہ آج ہم یہ نہیں کرتے. آج ہم نے بھی تو بزرگوں کی یادگاریں قائم کر کے ادھر گدیاں رکھی ہوئی ہیں اور سارا دن بیٹھ کے ادھر اپنے نذرانے وصول کرتے ہیں اور دس اور دیٹ, اور خوش ہوتے ہیں کہ یہ سب کچھ ہمارے لیے بہت اچھا ہو گیا. فرمایا نہیں, جو آج بچ کے جائیں گے ان کا حال کیا ہے. اولئک لہم جنات عدن تجری من تحتہم الانہار, یا تو جنت ہے یا جہنم, کوئی تیسری جگہ نہیں ہے. ہم سب کو اس کے لیے اپنے آپ کو پوچھنا ہے کہ میں کدھر ہوں, یا میں ادھر ہوں یا میں ان کے خلاف ہوں. کہتے نا کہ if you are not with them then you are against them, اگر آج ہم نیک نہیں ہیں تو پھر مان لیجئے کہ ہم نیکوں کے خلاف ہیں. آج ہم اگر جنتی نہیں ہیں تو مان لیجئے کہ پھر ہم جہنم کی کسی قطار میں کھڑے ہوئے ہیں. یہ لگ پاتا ہے کہ ہمیں پتہ کوئی نہیں چل رہا اور ہم اپنے آپ کو بہت ہی زیادہ مطمئن کر کے اس چیز پہ لے کے بیٹھے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو لوگ کوششیں کریں گے, جو حقیقت میں ایسے گرتے ہوئے حالات میں دین کو تھامیں گے کہ جس وقت چاروں طرف کے حالات بگڑے ہوں تو ایسے لوگوں کو پھر ہم انشاءاللہ اپنی جنتیں دیں گے. اولئک لہم جنات عدن, ہمیشگی کی جنت, ایور لاسٹنگ. کیوں بھائی, نیکیاں تو 10, 12, 20, 25, 60 سال کی تھی, جنت ہمیشہ کی کیوں؟ اس لیے کہ ایسے لوگوں نے اگر ان کو زندگی ہمیشہ کی مل جاتی تو یہ ہمیشہ یہ کام کرتے, اور وہاں وہ سونے کے کنگنوں سے آراستہ کیے جائیں گے. سونے کے کنگن کیا, صرف عورتوں کو نہیں مردوں کو, لیئر موڈ کی علامت ہے. زیور پہن کے ادائیں دکھائی جاتی ہیں اور عموماً کام کرنے کو دل نہیں چاہتا, تو جنت میں کام تو ہوگا نہیں کیونکہ کام بہت کر چکے. الحمدللہ دنیا میں اپنی زندگیاں کپا دی, تب وہاں مزے ہی مزے ہیں, کہاں وہاں سونے کے کنگن پہننے ہوں گے, باریک ریشم اور اطلس و دیبا کے سبز کپڑے پہنیں گے, یعنی استر بھی ہے اور اوپر کا کپڑا, یعنی یہ ایک استر ہے اور ایک اوپر کا کپڑا. عموماً ہم کہتے ہیں اوپر کا کپڑا خوبصورت ہو جائے, अंदर का जैसा भी हो, लेकिन बस अब आप देखिए बस कपड़े इतने बारीक होते हैं कि उसके नीचे भी लोग कीमती कपड़ा लगाते हैं। जिस तरह याद रखिए कि अस्तर झलकता है ना बारीक कपड़े के अंदर, इस तरह हमारी रूह की कैफियत हमारे आमाल से झलकती है। हमारी नमाज हमारी रूह की कहानी बताती है, हमारा रोजा हमारी रूह की कहानी बताता है, हमारा नेकी की भाग दौड़ करना हमारी रूह के अस्तर को दिखाता है। अगर रूह खूबसूरत है इन सारी चीजों में हुसन होगा, और अगर नहीं है तो फिर वही बात है कि नीचे मलमल के अस्तर लगे हुए, ऊपर चाहे आप ऑर्गेंजा पहने या बारीक शफून पहने, यह अब आपकी अपनी मर्जी है, लेकिन अल्लाह ताला कहते हैं कि मैंने तो तैयार कर दिया। और ऊंची मसनदों पर तकिए लगाकर बैठेंगे, बेहतरीन अजर और आला दर्जे की क्यामगा। क्या ये मुश्किल है? क्या हम इसको नहीं ले सकते? अल्लाह से दुआ कीजिए कि हमारी प्रायोरिटीज बदल जाएं। इसलिए अगला वाक्या जो है, पहला वाक्या ईमान की आजमाइश का था, सब कुछ लेकर आजमाया असाबे कहफ को। अब अगला वाक्या देखिएगा, सब कुछ देकर आजमाया जा रहा है। ये वो शिर्क है कि मैं अपने ऊपर तवक्कुल करता हूं। इस पूरे किस्से को अब आपने अना और बंदगी के मिजाज को सामने रखते हुए सुनना है कि किस तरह जब दौलत मिलती है या सलाहियत मिलती है तो इंसान कहते हैं मैं कर सकता हूँ एवरीथिंग फॉर मी, तो पहले किस्से का ये बिल्कुल ऑपोजिट है। कोशिश करेंगे पूरे किस्से को एक साथ पढ़ें। ए नबी, इनके सामने एक मिसाल पेश करो। दो शख्स थे, इनमें से एक को हमने अंगूर के दो बाग दिए और इनके गिर्द खजूर के दरख्तों की बाड़ लगा दी। यानी बेहतरीन किस्म का खूबसूरत बाग था कि जहां पे अल्लाह ताला ने ये सारी चीजें इनके सामने रख दी, और उसके बाद क्या किया उसको, और इनके दरमियान काश्त की जमीन भी रखी। यानी अरबों में कोई ऐसा बाग मौजूद हो जिसके अंदर ये सब कुछ हो तो उसको तो आज के दौर में आप कह सकते हैं कि बहुत ही ज्यादा आला स्टैंडर्ड का बाग कहेंगे। खूबसूरत बाग था उसका। दोनों बाग खूब फले फूले और बराबर होने में उन्होंने गुजरा सी भी कसर न छोड़ी। इन बागों के अंदर हमने एक नहर भी जारी कर दी, और जहां आयतें नाजिल हो रही हैं वहां आप देखिए कि पानी का तसव्वुर भी नहीं था कि बागों में पानी हो। एक नहर जारी कर दी और इसे खूब नफा हासिल हुआ। ये सब कुछ पाकर एक दिन वो अपने हमसाये से बात करते हुए बोला, क्या कहने लगा, अना अक्सरु मिनका मालं वा अज़ू नफरा। ये है अना का डूबा हुआ जुमला, मैं तुझसे ज्यादा मालदार हूँ और तुझसे ज्यादा ताकतवर नफरी रखता हूँ। ऐसे लग रहा है कि जैसे उसको टूर कराने के लिए गया, क्या हो देखो, जैसे आज भी लोग घर बना तो ले फिर लोगों को बहाने से बुलाते हैं, हाउस वार्मिंग तकरीब है, फिर एक एक कोना दिखाते हैं, ये हमारी जिकोजी है, ये हमारी पेंट्री है, ये हमारे दो किचन है, ये टाइलें इटली से आई थी, ये वहां से आई थी। तो याद रखिए, ये दूसरों को मरूब करना चाहता है। गोया कि आप कह लें कि आराइश से ऊपर उठ के नुमाइश तक आ गया। अब गरीब दोस्त मुतासर तो कोई ना हुआ, तो ये खुद ही कहने लगा, मां सुन तबीद हाजी ही अबदा, मुझे नहीं लगता कि ये कभी भी ऐसा होगा। अपने दोस्त को सुनाते हुए कह रहा है कि देखो ये मेरा घर है। फिर वो अपनी जन्नत में दाखिल हुआ और अपने नफ्स के हक में जालिम बनकर कहने लगा, मैं नहीं समझता ये दौलत कभी फना हो जाएगी। लिख लें, ये दौलत के साथ जो फितना बंदे के दिमाग में आता है वो ये कि अगर आज दौलत है तो ये कभी जाएगी नहीं। आज भी देखिए जो खाते पीते हैं कभी नहीं सोच सकते कि आज से 20 साल बाद उनकी नस्लें हो सकता है कुछ पैसों पे नौकरियां कर रही होंगी, लेकिन हमने अपनी आंखों से लोगों को इस तरह बदलते देखा है, लखपति का अखपति होते हुए दिखे गए। क्योंकि ये अल्लाह ताला ने दुनिया की दौलत के साथ नहीं कहा कि आज है तो कल भी रहेगी, और मुझे तवक्को नहीं कि क़यामत की घड़ी कभी आएगी। फिर अगर कभी मुझे अपने रब के हजूर पलटाया भी गया तो जरूर इससे भी ज्यादा शानदार जगह पाऊंगा। ये दूसरी खराबी है दौलत के साथ जो खराबियां पैदा होती हैं। पहली खराबी क्या है कि ये कभी नहीं मिटेगी, और दूसरी ये कि जिस रब ने मुझे दुनिया में दे दिया मुझसे मुतासिर होकर वो कल भी मुझे देगा। क्योंकि मैं बहुत अच्छी थी तो मुझे दुनिया में दिया, तो अब ज्यादा अच्छी हो जाऊंगी तो कल मुझे आखिरत में भी दे देगा। तो फरमाया ऐसी बातें नहीं होती, लोग अपने तौर पर ये सोचते हैं। उसके हमसाये ने गुफ्तगू करते हुए इससे कहा, यानी कोई इंटरेस्ट नहीं लिया उसकी बात तो, उसे कोई मुतासिर नहीं हुआ, क्या तू कुफर करता है उस जात से जिसने तुझे मिट्टी से पैदा किया? सोचिए जरा, ये होता है एक मोमिन का नुक्ता नजर। मोमिन की राहत दुनिया के घरों में नहीं है, मोमिन की राहत इस चीज में नहीं है कि वो लोगों के घरों को देखे, वो हाय हाउ इज सो ब्यूटीफुल सो लकी, और हमारा घर अब्बू ऐसा क्यों और अम्मी हमारा घर ऐसा क्यों नहीं। कहने लगा, मट्टी से बनाया तुझे, फिर नुतफे से पैदा किया और फिर तुझे एक पूरा आदमी बनाया। क्या पता चला कि जब लोगों के दिमाग से खुद पसंदी और बड़ाई निकालनी हो तो उनको उनकी औकात याद दिला दो। तुम हो क्या रहा मैं? अब उसको इम्प्रेस करके असल में तो जलाना चाह रहा था ना। और याद रखिए कि जब भी लोग अपनी नेमतों का इस तरह एक्सपोजर करते हैं वो अगले को खुश नहीं कर रहे होते, बल्कि इम्प्रेस करके उसको अपने अंदर लेना चाहते हैं कि जरा मैं इसको बता दूं, तो वो बेचारा तो इम्प्रेस कोई नहीं हुआ क्योंकि उसकी नजरें तो अपने रब पे थी। मैं तो इसके साथ किसी को शरीक नहीं करता, और जब तो अपनी जन्नत में दाखिल हो, उसको मशवरे दे रहा। देखिए इससे पता चलता है कि दोस्तों को मशवरे देने चाहिए अच्छे। जब तो अपने बाग में दाखिल हो रहा था तो इस वक्त तेरी जुबान से ये क्यों ना निकला कि माशाल्लाह ला कुव्वत इल्ला बिल्ला। इसको भी नोट कीजिए। देखिए ये माशाल्लाह कहना हमारे कल्चर में था, हमारा रिलीजियस फैक्ट था, लेकिन आज हमने इसको भी बुरा समझा। असल में अगर आप बंदगी के नुक्ते से इसको समझ लें तो शायद आप इसको ज्यादा अच्छा एंजॉय कर सकें। और वो क्या है कि माशाल्लाह कहना क्या है कि मैं कुछ नहीं कर सकती, जो हुआ जो किया गया अल्लाह के हुक्म से हुआ। बंदगी को तोड़ने वाला जुमला माशाल्लाह। इसके बरक्स अमूमन लोग अपनी जिंदगी में क्या कहते हैं, लिखिए जरा इसको बदल के, माशा अल्लाह की जगह क्या लिखेंगे, माशा अनी, जो मैंने चाहा वो होता है। तो याद रखिए कि जब लोग इस किस्म की बातें करने लग जाते हैं कि जो मैं चाहता हूँ, आप अपने जुमले नोट कर लीजिए, अपनी खुद एहतसाबी में ये नुक्ता डाल के देख लीजिए कि सारा दिन यही बोलती रहती हूँ कि जो अल्लाह ने चाहा वो हुआ, या मैं ये सोचती हूँ कि जो मैंने चाहा वो हुआ। कैसे जुमले बोलते हैं, ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है, ये तो मैं मिनटों में कर लूंगी, ये तो चंद मिनट की बात है, इट्स नॉट प्रॉब्लम, इट्स ओके, मेरे लिए तो बहुत इजी। ये भी कदा बन गई आज के दौर में कि लोग ये कहते हैं हमारे लिए कुछ मुश्किल नहीं, अच्छा अमेरिका जाना है नो प्रॉब्लम, हम तो हर महीने में एक चक्कर लगा ही आते हैं, और बस हाँ कोई बड़ी बात नहीं, ओके, अच्छा सिर्फ 1 लाख का जोड़ा बनाया आपने, ओके नो प्रॉब्लम, इट्स नॉट बिग डील। ये जुमले होते हैं, उनकी टोन इस किस्म की होती है कि जिस टोन की वजह से वो लोगों को ये दिखाना चाहते हैं कि दुनिया के काम लोगों के लिए मुश्किल है, हमारी अप्रोच, अच्छा वो वजीर वो तुम्हारे घर आते रहते हैं, चाय पीते हैं, वो मेरे फलां, वो मेरे हस्बैंड के दोस्त हैं, अच्छा उनसे कोई काम है। यकीन करें मैंने ऐसी बहुत सारी सिस्टर्स के साथ जिंदगी गुजारी है कि जिनकी टोन ही होती है कि नथिंग इज इम्पॉसिबल, हमारे लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है। तो ऐसे वक्त में एक इंसान जब अपने आप को बड़ा कहता है तो अल्लाह सुबहान तआला को वो बहुत छोटा लगता है। आप और अपनी दोस्तों के साथ अगर बात करें तो उनके लिए भी आप इस तरह की नसीहत की बातें रखा करें ताकि कुरान का एक असर उन तक भी आपके जरिए से जाए। हाँ इन तरह नहीं है ना अकल्लम इनका मालम व वालदा फासा रबी यानी खैरों में जन्नतिक। हाँ अगर तू मुझे माल और औलाद में अपने से कमतर पा रहा है, यानी मेरा घर छोटा है, मेरी गाड़ी पुरानी है, टूटी हुई है, नो प्रॉब्लम, बईद नहीं, यानी इट्स क्वाइट पॉसिबल कि मेरा रब मुझे तेरी जन्नत से बेहतर अता फरमा दे। इसको हाईलाइट करें, ये है निगाह बुलंद, ये है दो आलम से करती है बेगाना दिल को। बंदा है मोमिन के, देखिए इसके पास एक भी बाग नहीं है और इसके दोस्त के पास 2 बाग हैं, और कह क्या रहे कि मुझे तुझसे बेहतर मिलेगा, यानी कम से कम 3 तो मिलेंगे ना, या कम से कम 2 मिले तो उनकी क्वालिटी तो अच्छी होगी। यही सोच हमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में दिखती है कि खंदक खोदते हुए लोगों को कह रहे हैं कि मुझे कैसर किसरा के खजाने दिखाए गए और मुझे रोम और फारस की चाबियां दिखाई गई। ये कौन कर सकता है, ये बल्ला का एतमाद किस में है, ये सिर्फ उस पे है जिसकी नजरें रब पे लगी हुई है। मेरे रब के लिए कोई मुश्किल नहीं, तुम जाओ पैनी पैनी जमा करो, चंदा जमा करो, मुझे जरूरत ही नहीं है इसकी अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि मेरा रब मुझे जब देने का इरादा करेगा मुझे तुम लोगों के वास्ते पे नहीं डालेगा। यकीन कीजिए अगर हम सब इस यकीन के साथ दुनिया में बसर करें जिंदगी, तो हदीस में आता है कि जिस तरफ परिंदे रिस्क पाते हैं तुम भी रिस्क पाओ, कि खाली पेट सुबह निकलते हैं और शाम को आते हैं तो पेट भी भरे होते हैं, और चोंच में अपने बच्चों के लिए दाना भी होता है। ये आज अगर हम परेशान हैं तो कमी हमारे अपने अंदर है, अल्लाह ने हमारे लिए सारे फैसले अच्छे किए हुए हैं, कब मुझे तो मिल जाएगा, और तेरी जन्नत पर आसमान से कोई आफत भेज दे क्या वो उसको बददुआ दे रहा है, नहीं, उसको पता है कि नाफरमानियों का असल यही नतीजा है जो हम सूरह इब्राहिम में पढ़ चुके हैं कि वाला इन कफर तुम इन अज़ाब लशदीद। तो याद रखिए कि जिन चीजों पर लोग दुनिया ले खुश हो रहे होते हैं ना, बड़के मारे होते हैं, एक मोमिन अगर वाकई उन लोगों से प्यार करता है तो वाहें भरता है, अल्लाह इनको नहीं पता इनके ये मामले कल इनको कितनी बड़ी मुश्किल में लाने वाले हैं। कभी अपने प्यारों की नेमतें जो नाफरमानियों से हराम से मिले उनको देखकर उनको दुआ कर देना ना छोड़े कि अल्लाह ये नेमत इनके लिए बबाल ना बना देना।